नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कहने को भारत अभी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से मित्र देश के रूप में उसे आमंत्रण मिलता आ रहा है। इसी कड़ी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को इस बार के G7 सम्मेलन के लिए न्योता भेजा था। उनकी तरफ से तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही निमंत्रण भेज दिया गया। अब पीएम मोदी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज यानी कि शुक्रवार को दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी अहम मुलाकात होनी है। कई द्विपक्षीय वार्ताएं रखी गई हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी कई मुद्दों पर उनकी चर्चा होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक के साथ भी उनकी चर्चा होनी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ भी उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। अब इतने नेताओं से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उनकी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि अंत में इटली की पीएम ने मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए एक डिनर का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। ऐसे में वहाँ पर पीएम मोदी भी जाने वाले हैं। अभी हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर G7 क्या सही में इतना ताकतवर है भी। जानकारी के लिए बता दें कि G7 के जो देश हैं वो दुनिया की GDP का 40% हिस्सा है। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापार की जब बात आती है तो G7 की हिस्सेदारी उसमें 30-35% के करीब बैठती है। समझने वाली बात ये भी है कि इस समय जो वर्ल्ड बैंक और IMF है, वहाँ भी G7 देश की सबसे ज़्यादा चलती है। आर्थिक नीतियों के मामले में भी G7 के देशों की हर राय को स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान में UNSC का प्रभाव जिस तरह से घट चुका है, जिस तरह से लगातार चीन और रूस के तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से कोई भी बड़े फैसले नहीं हो पाए, उस स्थिति में भी G7 ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। दिलचस्प बात यह भी है कि जो G7 देश हैं उनके पास गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी तमाम बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं। कहना चाहिए उनके मेन स्टेशन इन्हीं देशों में इस समय मौजूद हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये सारे देश सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भारत के लिए तो मित्र देश के रूप में भी शिखर सम्मेलन में शामिल होना मायने रखता है, क्योंकि भारत और इटली की दोस्ती कई दशक पुरानी है। इटली और भारत के बीच में 1,25,000 करोड़ का व्यापार होता है। इटली की 700 से ज़्यादा कंपनियाँ भी इस समय भारत में काम कर रही हैं और खूब मुनाफा कमा रही हैं। पिछले कुछ सालों में इटली का निवेश भी भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वर्तमान में यह आंकड़ा 28,700 करोड़ के करीब बैठता है। कुवैत में हुए अग्निकांड से हर कोई स्तब्ध रह चुका है। 40 भारतीय मजदूरों की मौत ने कई सवाल उठा दिए हैं। हर कोई चर्चा कर रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट के इस देश में मजदूरों की ऐसी ख़राब हालत कैसे चल रही है। अभी तक स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। अब कुवैत में हालात चिंताजनक हैं, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ वहाँ पर इस समय ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो ये गलत होगा। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी इस समय UAE में मौजूद हैं। UN की ही प्रवासियों पर जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी UAE में रहते हैं। पिछले कई सालों से ये पैटर्न चलता आ रहा है। जिस तरह से नौकरी की तलाश में लोग कुवैत भागते हैं, उसी काम के लिए UAE का भी रुख किया जाता है। वहाँ भी भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा जगह दुबई मनी हुई है। अब एक वर्ग तो ज़रूर वहाँ पर व्यापारी बन शानो शौकत वाला जीवन जी रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका मजदूर बनकर जाता है जो कम संसाधनों में और खस्ता हालातों में रहने को मजबूर है। एक आंकड़ा बताता है कि वर्तमान में UAE में 35 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि UAE की 88% आबादी ही प्रवासियों की है, यानी कि देश का जो विकास हो रहा है, जो वो पैसा कमा रहा है, उसमें उसके खुद के नागरिकों से ज़्यादा प्रवासियों का योगदान चल रहा है। इन सब के बावजूद भी UAE में भारतीय मजदूरों की हालत ठीक नहीं है। जैसे कुवैत में मजदूरों के साथ शोषण होता दिख जाता है, वैसी ही स्थिति UAE में भी बनी हुई है। UAE में ज़्यादातर इलाकों में मजदूरों को कम वेतन में ज़्यादा घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। गर्मी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, मजदूरों को कभी भी राहत नहीं दी जाती है। इसके ऊपर उन्हें छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं। वो लोग सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे को भारत भेजने का काम करते हैं। वहाँ रह रहे भारतीय बताते हैं कि दुबई के बड़े मार्केट से तो वो लोग सब्जी तक नहीं खरीद सकते हैं, इतना पैसा ही वो नहीं कमा रहे हैं। ऐसे में कुछ चुनिंदा इलाकों में ही ज़रूरी सामान खरीदने का काम होता है। एक आंकड़ा बताता है कि UAE और सऊदी अरब में 2019-20 में सबसे ज़्यादा भारतीय मजदूरों की मौत हुई थी। लगातार हो रही इन मौतों के वैसे तो कई कारण बताए गए, लेकिन सबसे प्रमुख रहा वहाँ पर मजदूरों को मिल रही खस्ता स्थिति। कई मजदूर या सुसाइड कर लेते हैं या हार्ट अटैक या फिर किसी दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय प्रवासी लगातार इन देशों का रुख कर रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।